सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है सबसे बड़ी है सेवा। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। उनका जीना क्या जीना, सत्कर्मों का जिन्हें ज्ञान नहीं। जिन्हें स्वयं की दया धर्म की, जिन्हें स्वयं की दया धर्म की प्रभु की भी पहचान नहीं। प्रभु की भी पहचान नहीं। मानव जीवन है अमूल धन, इसे न व्यर्थ गवाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है सबसे बड़ी है सेवा। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं। जीवन जग में सारे प्राणी किसी तरह जी लेते हैं। किंतु धन्य है जो प्रभु से नित, किंतु धन्य है जो प्रभु से नित ज्ञान अमृत को पीते हैं। ज्ञान अमृत को पीते हैं योगी पावन जीवन देकर परमानंद लुटाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है बड़ी है सेवा। परम पिता के हम सब बच्चे, परम पिता के हम सब बच्चे, अपना घर वसुंधरा। परम पिता के हम सब बच्चे, अपना घर वसुंधरा। स्नेह प्यार से जीने की, स्नेह प्यार से जीने की शुरू करे नव परंपरा। शुरू करे नव परंपरा, मनमानी कर्मों से खुशियों का सागर चलकाना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। सफल बनाना है सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। सुख शांति की राह दिखाकर जीवन सफल बनाना है। जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है।
ओम शांति। भारतीय साहित्य में विक्रम और वेताल की कहानियां बड़ी प्रसिद्ध है, जिसको वेताल पच्चीसी भी कहते हैं। उसमें एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति बहुत निर्धन है, जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बहुत दुखी है, और वो एक योगी से मिलता है और उस योगी से अपनी व्यथा कहता है कि मैं बहुत निर्धन हूँ, विपन्न हूँ, क्या करूँ, कैसे मुझे धन प्राप्त हो। वो योगी कहता है तुम्हें इस जन्म में कभी धन नहीं मिल सकता, और जिस दिन तुम्हें धन मिल जाएगा, जिस दिन तुम अमीर हो जाओगे, उस दिन तुम मर जाओगे। ये वेताल विक्रम को कहानी सुना रहा है। कुछ दिनों के बाद उस गरीब व्यक्ति को जमीन में गड़ा खजाना मिल जाता है, और वो खजाना दूसरों की सेवा में लगाता है और एक लंबी आयु जीता है। तो हे विक्रम, बता क्या उस योगी का दिया हुआ की हुई वो भविष्यवाणी गलत है? तो क्या कहा होगा विक्रम ने? योगी ने कहा था जिस दिन उसे धन मिल जाएगा उस दिन वो मर जाएगा, पर उस व्यक्ति को धन मिला और धन लंबा समय तक चला। तो हे विक्रम, तू अब ये बता क्या उस योगी की भविष्यवाणी गलत थी? विक्रम कहता है, सम्राट विक्रमादित्य कहते हैं कि वो व्यक्ति ने जो भी धन पाया वो उसने अपने लिए प्रयोग ही नहीं किया। योगी ने कहा था जिस दिन धन मिल जाएगा, अर्थात वो जो जिस दिन अमीर हो जाएगा उस दिन वो मर जाएगा, परंतु वो कभी अमीर हुआ ही नहीं। उसने वो सारा धन दूसरों की सेवा में लगा दिया, इसलिए वो लंबी आयु जिया। पर तू बोला इसलिए मैं तो चला, और वो वेताल उड़कर चला जाता है। एक योगी की हुई भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। भगवान योगियों का ईश्वर योगेश्वर है, तो उसकी जो की हुई भविष्यवाणी है वो भी असत्य हो नहीं सकती। लास्ट संडे की मुरली भाग दूसरा। अभी क्या खड़े हैं सामने और वहां क्या खड़े हो जाएंगे? बस खड़ी है और क्या खड़ा है? जीप खड़ी है। एक समय आएगा वहां पर विमान खड़े हो जाएंगे, हेलीकॉप्टर से तुम नीचे उतरोगे, ऐसा भी समय आएगा। भगवान की भविष्यवाणियां हैं, हर मुरली में भविष्यवाणी आती है। हर मुरली को यदि गहराई से देखे समझे जाने तो हर साकार मुरली में भी बहुत सारी भविष्यवाणी आती है। वो समय आएगा, बाबा ने कहा कि संसार की आत्माएं चिल्लाएगी, डरेगी और तुम उड़ोगे, वो डरेंगे और तुम उड़ोगे, सब कुछ अपना दे जाएंगे। एक उदाहरण दिया चाबियों का, वो कहां का और कैसा उदाहरण है विस्तृत हम भी जान नहीं पाए। सिंध हैदराबाद या कराची की बातें हैं कि जो बाबा ने कहा वहां पर सब लोगों ने चाबी सौंप कर चले गए। शायद जब यज्ञ वहां था तो कई सारे स्थान बदले थे उधर भी, और उस समय बहुत हलचल भी चल रही थी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, तो शायद वो तो काफी पहले हुआ, बाद में हुआ, पर शायद उस समय लोगों ने शायद चाबी दी, पर इसका किसी दादी के अनुभव में वर्णन नहीं है। कौन सी चाबी, कैसी चाबी, पता नहीं, पर ये मुरली में आया है, शायद एक ही मुरली है जिसमें ये बात आई है, तो आप सब इसको ढूंढ सकते हैं, कहाँ है ये वर्णन और किस संबंध से बोला है बाबा ने। तो भविष्यवाणी है मुरलियों में, हर मुरली में कुछ ना कुछ भविष्यवाणी होती है, तो इस मुरली में भी बाबा ने भविष्यवाणियां की है, ये ऐसा समय आएगा। और जो भगवान के किए बोली हुई बातें हैं वो कभी भी असत्य हो नहीं सकती। तो भगवान का एक एक शब्द अनमोल है, उसको उसी रीति से समझना है जिस रीति से वो बोला गया है, जिस भाव से वो बोला गया है, जिस अर्थों से वो बोला गया है। तो आज हम जो अव्यक्तवाणी चली थी दूसरी, उसकी चर्चा करेंगे। पहले आप बताएंगे, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं और 3 दिनों में बहुत सारी दूसरी साकार मुरली आ गई, तो पहले आप बताएंगे उस मुरली में क्या था, उसके बाद में चर्चा चालू करेंगे। किस बारे में थी पहले तो मुरली? ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है, आज सुबह की साकार मुरली, वो पढ़ाई उधर नहीं है, ये पढ़ाई इधर है। देवता है ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, ये तुम पढ़ते हो। और क्या था उस मुरली में? यहां सुख देने आते हैं वहां भी सुख होगा, और देवताएं त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, और संडे की मुरली दूसरा भाग, उसमें जो बातें आई है वो बतानी है। हाँ, फर्स्ट क्रिएशन है ऑलमाइटी की, और हमने देखा हमने पाया ब्रह्मा और शिव को के द्वारा, और माताओं को याद आ रहा है कुछ? संडे की अव्यक्तवाणी भाग दूसरा, माता पिता सखा बंधु सब कुछ साजन तू ही, आज की मुरली में भी है एक जगह यही बात, यहां दुख है वहां सुख है, और शास्त्री सन्यासी चिल्लाते रह गए, ढूंढते रह गए और तुमने पा लिया, और खुशी से फलक से नशे से निश्चय से दिल से कैसे कहते हो, और ग्रामीण जीवन के आधार पर ही कल्प वृक्ष वृद्धि को पाता है, और इधर कुछ याद आ रहा है किसी को? कि थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ऐसे सुना हुआ है ये बातें, तो थोड़ी थोड़ी पता नहीं कब आई थी, ठीक ठीक बोल रहे हैं ये लोग, शायद आई थी। हाँ पता नहीं आज की थी कौन सी थी पता नहीं, पर बातें तो ठीक ठीक लग रही है, ऐसा लग रहा है। और हाँ, तुम पूर्वज हो ये भी बात थी, और अंतर्मुखी हो, आज की मुरली नहीं संडे की मुरली, 3 दिन पहले की मुरली चालू है, अंतर्मुखी हो याद की यात्रा में रहो, ये तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। तुम जन्म पत्री जानने वाले हो, और तुम भगवान से हथियाला बनवाते हो, और सामूहिक सहगाई कराते हो, देखो कितनी सारी बातें सबको याद है, और साकार रूप में साकारी सृष्टि में ढेर सारी बातें थी वहां पर, फिर और तुम हद के जिम्मेवार नहीं, और जो हद के जिम्मेवार है वो क्षत्रिय, और इधर नीचे से अविनाशी अखूट अटल अखंड खजाना मिलता है, और तीरंदाजी और 3 निशाने पर लगाना, ये 2 है, एक जाएंगे उधर एक जाएंगे उधर, और निशाना स्वरूप है, वाह, और भी कुछ था पीछे से? महान आत्माएं, और मुरली सुनाने नहीं आए, बच्चे से मुरली, ये पार्ट वन था, हम अभी पार्ट टू में हैं। और ब्राह्मण और क्षत्रियों का, दोनों का खेल देख रहे थे। और किससे, वो हो गया, वो पार्ट वन, पार्ट वन वो हो गया। ये दूसरी मुरली है, 3 तारीख की, 5 तारीख की, जिम्मेवार बताया। और किसके साथ, भगवान के साथ खेल रहे, घूम रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। और बार बार समाधान करने में लगे रहेंगे और वो समस्या में रह जाएंगे। तो मौज मनाने का समय है, परंतु विनाशी मौज नहीं मनाना। तो इस मुरली में बाबा ने ब्राह्मणों की महिमा की है, ब्राह्मण जीवन की महिमा की है। तो इसमें पूरी 21 बातें हैं और एक एक बात अभी हम देखेंगे। इस ब्राह्मण जीवन की 21 बातें, या फिर तुम ब्राह्मण कौन हो। तो शुरुआत में ही बाबा ने कहा तुम, सबसे पहली बात, तुम कौन हो, फर्स्ट क्रिएशन, तुम पहली रचना हो। तुम कौन हो, पहली रचना हो, श्रेष्ठ रचना हो, ब्राह्मण हो। इसीलिए रचता को बाकी रचना से तुम प्रिय हो, बाकी जो रचनाएं हैं उनसे तुम अधिक प्रिय हो, क्योंकि तुम फर्स्ट हो। कुलदीपक, घर में पहला बच्चा आया, खुशी होती है ना बाबा, बहुत समय से बच्चा ही नहीं था कोई, 5000 साल से बच्चा था ही नहीं, और फिर बच्चे हो गए तो खुशी। तो हम सब कौन है, फर्स्ट क्रिएशन, पहली रचना है। ये एक एक बात जो इस मुरली में कही है, एक दिन के लिए ये मुरली नहीं है, हमेशा याद रखने के लिए मुरली है, और हर दिन याद रखने के लिए मुरली है, क्योंकि ये मुरली की जो बातें हैं वो स्वमान की बातें हैं, और आत्मा जब तक स्वमान में स्थित नहीं हो जाती है, ऊपर उठ नहीं सकती, नीचे रहती है, हीनता के भाव में जीती है, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरे से ये होगा नहीं, जीवन के दुख दर्द उसी में डूबी रहती है, उसे उभर कहां सकती है, पुरानी बातों की याद में जीती रहती है, बैठ कर पूछो किसी से क्या कर रहे हो, पुरानी बातें याद आ रही, या तो भविष्य की चिंता। अगर ज्ञान चिंतन नहीं हो रहा है तो बुद्धि अतीत में जाएगी या तो भविष्य में जाएगी, वर्तमान में नहीं रहेगी। इसके लिए कल परसों भी मुरली में आया था, आज भी, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो, एक बात ले लो और उसके बारे में सोचो। अब ये फर्स्ट, ये ज्ञान बहुत डीप है, ये ज्ञान डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, दो शब्द आए आज की मुरली में, ये बड़ा डीप है, मंजिल जो है बहुत ऊंची है आत्माभिमानी बनने की। सहज राजयोग ब्रैकेट में डिफिकल्ट, तो ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है ये कि बुद्धि इस ज्ञान में लग जाए, बुद्धि आज की मुरली में डूब जाए, क्योंकि उसको इतने काम करने हैं संसार के, इतने लोगों को कुछ कुछ करना है, ठीक ठाक करना है दूसरों को, उसमें लगे हुए। अब जो समय चल रहा है, किसी और को कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं, वो समय चला गया, आगे हम दूसरों को बताएं, ठीक करें, सबको सब पता है, फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है, छोड़ दो, जो कुछ करना है मुझे केवल और केवल अपने लिए करना है, उसी से उनका कल्याण होगा। नहीं तो सुबह था ना संग का रंग, उनके संग में अगर हम कमजोर है तो उसके संग में आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो थी वो थी, मैं कौन हूं, फर्स्ट क्रिएशन हूं। इसको हम खेल के रूप में बनाएंगे। आपका नाम क्या है, इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ यहां, ये है फर्स्ट पॉइंट। इनको देख के हमको 21 बातें याद करनी है मुरली की, कितनी बातें, 21 बातें अर्थात 21वां मान, क्या नाम है? नीरज। तो नीरज अर्थात फर्स्ट क्रिएशन। अब इनको देखोगे तो ये याद करना, कौन है ये? फर्स्ट क्रिएशन। बैठ जाओ, बीच में फिर हम पूछेंगे बाद में पूरी 21 बातें। इनको देखकर ये पॉइंट नीरज भाई से जोड़ दो, ये कौन है? फर्स्ट क्रिएशन। दूसरी बात, ब्रह्मा मुखवंशावली। दूसरी बात, ब्रह्मा मुखवंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा। हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा बड़ा साधारण जन्म नहीं है। मुख कमल से जन्म जिसने लिया है, ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान की धारा बही है, उस ज्ञान के द्वारा जिसका जन्म हुआ है वो हम है। तो याद रखना है, दूसरा सम्मान जो दिया है बाबा ने, ये बातें कुछ ऐसी नहीं है कि जो हमने सुनी नहीं है। हजारों बार सुनी होगी, परंतु कितनी गौर से सुनी, कितना उसके तरफ ध्यान दिया। हमारा जन्म फिजिकल बर्थ नहीं है, इसके लिए हमारा सुख भी आज की मुरली में है। आधे कल्प से हिरे हुए हैं, इसलिए विनाशी में प्यार करते हैं, अविनाशी से प्यार नहीं करते। अविनाशी से प्यार करो तो अविनाशी हो जाओगे। देह से प्यार है, ये जानना कि मेरा जन्म, मैं मानस पुत्र हूं। वो जो चार दिखाए हैं ना, सनक सनंदन सनातन, वो जो सनत कुमार, वो कोई साधारण नहीं थे, वो ब्रह्मा पुत्र थे, बड़े पावरफुल थे, बड़े तेजस्वी थे, जिसको शाप, विष्णु को भी शाप दे दिया था, ऐसा दिखाया है उसमें। इतने तेजस्वी कुमार थे वो सारे। तो हम कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली, सनत कुमार। सनत कुमार कहते हैं उनको, सनक सनंदन सनातन और सनत, ऐसे चार है नाम। तो पप्पू भाई इधर आ जाओ। तो ये है कौन? ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। तो याद रखना, इनके साथ जोड़ दो ये, और जब भी इनको देखो तो याद करना ये कोई साधारण नहीं है, कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो तो ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। तीसरा, ये डायरी खोलकर बैठी है कन्या, इधर आ जाओ। मैं देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। क्या नाम है?
काजल
बहन। अर्थात देवताओं से भी श्रेष्ठ। देवता इनके सामने कुछ नहीं है, लक्ष्मी इनके सामने कुछ नहीं, लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ मैं कौन हूं? ब्राह्मण आत्मा हूं। याद कर दो इसके साथ वो पॉइंट जोड़ देना, और जिनको बोला है वो भी याद रखे अपनी पॉइंट। काजल बहन अपनी पॉइंट याद रखना, और बाकी लोग भी उसकी पॉइंट याद रखना, ताकि हम इसको याद रखें। तो तीसरा क्या है? देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। चौथी, यहां पर बाबा ने कहा है कि तुम संगमवासी हो। तुम कौन हो? आदि संगमवासी। आदि संगमवासी अर्थात त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री हो। विष्णु भाई कौन है? आदि संगमवासी। आदि संगमवासी अर्थात ज्ञान स्वरूप है, अर्थात त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है। ये शब्द हमने कई बार सुने हैं, परंतु इन शब्दों को अंतर मन में समा देना, ये ज्ञान समझने और समझाने का आज की साकार मुरली। तुम्हें दिव्य गुण संस्कार अपने आत्मा में धारण करने हैं। कितनी अच्छी पॉइंट बोली है। ये जो संस्कार है कैसे धारण होंगे? स्मृति से। हनुमान भूल चुका था कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, जामुवंत याद दिलाता है उसको, पवन तनय उड़ो, तुम उड़ सकते हो, अपना रूप दिखाओ, तब उसको स्मरण आता है कि मैं ये हूं, तत्वमसी, thou art that. तो ये जो शब्द है, ये जो स्वमान है, ये सब भी क्या है? उठाने के लिए है. मैं संगमवासी हूं, आदि संगमवासी हूं, मैं त्रिनेत्री हूं. त्रिनेत्री हूं अर्थात इन आंखों से देखने वाला नहीं हूं, अर्थात देह को देखने वाला नहीं हूं, अर्थात देह में मेरी रुचि नहीं है, अर्थात देह आकर्षण से मैं परे हूं. इन आंखों से देखने वाला, यहां से देखने वाला, यहां से, और यहां से मुझे वही दिखता है जैसी चीजें है यथार्थ. तो संगमवासी है विष्णु भाई, विष्णु भाई अर्थात संगमवासी, अर्थात त्रिनेत्री, अर्थात ज्ञान स्वरूप, अर्थात त्रिलोकीनाथ, कितना भी जोड़ सकते हो, त्रिकालदर्शी. ये तीसरा. उसके बाद में ये चौथा. उसके बाद में पांचवा. यहां पर बाबा ने कहा है, तुम आत्माओं ने साकार सृष्टि वाली पॉइंट किसने कही थी? आप ही आ जाओ. साकार सृष्टि में, साकार में क्या क्या किया तुम आत्माओं ने? आत्मा परमात्मा के मिलन का अनुभव किया. और क्या क्या किया याद है? आपने ही बताई थी पॉइंट क्या था. साकार सृष्टि में साकार बाप के साथ परमात्मा और आत्मा मिलन, आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव हमने देखा, हमने पाया. किसके द्वारा? ब्रह्मा और शिव के द्वारा यह अनुभव किया. उसमें बहुत सारी बातें है, खाना पीना, चलना उठना बैठना, सब कुछ बाप के साथ. सारे अविनाशी खजानों को पाया बाप के साथ. क्या नाम? लता बहन. अर्थात साकार सृष्टि में, इस साकार लोक में भगवान के साथ जिसका पार्ट है, कितना ऊंचा सम्मान है. साकार सृष्टि में भगवान के साथ जिसका पार्ट है, भगवान के साथ सारे कर्म कर रहे हैं, ऐसी आत्माओं के साथ कभी कभी दुख हो सकता है? कभी नहीं हो सकती ऐसी आत्माएं दुखी, क्योंकि भगवान साथ साथ चल रहा है. बैठ जाइए. तो ये पांचवा. छठवा किसने कहा था? विष्णु भाई ने बताया था. वो संसार के लोग क्या कर रहे हैं? ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, पर उनको वो मिला नहीं. वो ढूंढी ढूंढ रहे, चक्र लगा रहे, परंतु वो उनको मिला नहीं. और तुम क्या कहते हो? फलक से कहते हो. तुम क्या करते हो? नशे से कहते हो. तुम क्या कहते हो? निश्चय से कहते हो. तुम क्या कहते हो? खुशी से कहते हो. तुम क्या कहते हो? दिल से कहते हो. क्या कहते हो? बाप आ गया. और क्या कहते हो? बाप हमारा बन गया, बाप मेरा बन गया. उसको किस किस रूप में देखते हो? साथी, सखा, मित्र, माता पिता, बंधु, सब कुछ वो है, सब कुछ वो. ये सारा अनुभव करना. आप अभी आया तो अभी इधर आ जाओ. तो क्या नाम? मनोज. स्नोज. अच्छा, सनोज. तो इनका है, ये कौन है जो शंकराचार्य, इमाम, तीर्थंकर, साधु, सन्यासी, योगी, महात्मा कोई नहीं पा सका, वो इन्होंने पा लिया. और क्या क्या करते हो? दिल से, निश्चय से, नशे से, खुशी से और फलक से. ये कहते हो कि बाप को मैंने पा लिया, बाप हमारा सब कुछ है, साथी भी है, सखा भी है, बंधु सब है, सारे संबंध उससे है. बैठ जाओ. याद रखना इसके साथ, इनके साथ ये पॉइंट. बैठ जाइए. तो ये था पांचवा समान. छठवा समान कि छठवा में क्या बताया? जो कोई नहीं पा सका वो मैंने पा लिया. और ये प्राप्ति बड़ी सूक्ष्म है, अहंकार दिलाने वाली प्राप्ति नहीं है ये, क्योंकि हम ही अगर भूल गए तो हम ही गिर जाएंगे. इसके लिए सूक्ष्म इसका नशा रखना है अपने अंदर की हमने पाया, तो ये छठवी। उसके बाद में सातवी, कोई भी आ जाओ, कोई भी, रीमा बहन, अखूट, अखंड, अविनाशी, अटल, प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं। क्या है? अविनाशी, अखंड, अटल, अविनाशी, प्राप्ति स्वरूप आत्मा। तो रीमा बहन के साथ क्या याद रखेंगे कि ये भरपूर है, सब भरा हुआ है, कुछ भी नहीं खाली, इतना भर लिया है अंदर ही अंदर। तो ऐसी आत्मा, कितना ऊंचा सम्मान दे दिया बाबा ने, संसार की आत्मा एक खाली हो चुकी है, किसी के पास ना सुख है ना शांति है ना कुछ है, यहां हम खजाने इतने भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है, स्वरूप है वो, जैसे मूर्तिमंत एम्बॉडीमेंट, प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। सातवा, उसके बाद में आठवा, तुम फाउंडेशन हो। क्या हो? तुम फाउंडेशन हो, इस सृष्टि के फाउंडेशन हो, इस कल्प के फाउंडेशन हो, तुम पानी देते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति का सारी आत्माओं को। कितना ऊंचा ये सम्मान है। अगर मैं जड़ में हूं, यदि मैं फाउंडेशन हूं, तो मेरे मन में जो संकल्प आ रहे वो सृष्टि के एक एक आत्मा को प्रभावित कर रहे, यदि मेरे मन में विकार तो संसार की आत्माओं के मन में विकार, यदि यहां व्यर्थ तो वहां व्यर्थ, यहां हलचल तो वहां हलचल। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, हम जड़ों में है, जड़ हिल रहे तो पत्ते उधर हिलेंगे, झाड़ ही हिलेगा पूरा, यदि जड़ अचल है तो हम कौन है? फाउंडेशन है। अमित भाई कौन है? जड़, रूट्स, फाउंडेशन, इनके आधार पर सारी सृष्टि टिकी हुई है। जरा भी मत हिलना, आप हिल गए तो दुनिया हिल जाएगी तो हिलना नहीं। तो हम सब, कितना ऊंचा सम्मान दे दिया बाबा ने, हम फाउंडेशन है। ऐसा नहीं कि हमने ये सम्मान सुना नहीं है, पर कितना सोचा इसके बारे में, कितना एकांत में बैठ के, बाबा कहते जैसे पादरी एकांत में चिंतन करते, तुम भी एकांत में चले जाओ, ऐसे स्थान पर कोई मनुष्य भी वहां दिखाई ना दे, और वहां बैठकर चिंतन करो, झाड़ को देखो और चिंतन करो। कल की मुरली में था, फूलों के सामने जाकर बैठो और कंपेयर करो कि मैं कैसा बना हूं, कौन सा फूल हूं, काटा तो नहीं हूं। उसी तरह किसी झाड़ के सामने खड़े हो जाओ और देखो झाड़ को, सार क्या है, विस्तार क्या है, पत्ते क्या है, फल क्या है, फूल क्या है, पहली मुरली। और यह भी देखो इसकी जड़ें कहां है, और जड़ें गुप्त होती है, यह भूलना नहीं। जड़ों को यदि संकल्प आ जाए कि हम प्रत्यक्ष हो जाए तो क्या होगा? लोग आ जाएंगे लकड़ी काटकर, उसको भी काट के घर पे चूल्हा जलाने के लिए ले जाएंगे। इसके लिए जड़ों की शोभा है वो गुप्त ही रहे। ये सोचे कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, प्रसिद्ध साकार ये हो जाए, मेरी प्रत्यक्षता हो जाए, तो क्या कर देंगे? काट के ले जाएंगे। इसके लिए हम कौन है? आठवा जड़े। उसके बाद में नौवा मुहूर्त। क्या करने वाले हो तुम? सृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, निर्माण का कार्य है, उसके मुहूर्त निकालने वाले हो, बनाने वाले हो मुहूर्त। तो कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ। क्या नाम? अमनदीप। अमनदीप अर्थात मुहूर्त निकालने वाले। मुहूर्त कौन निकालते हैं? जो ज्योतिषी होते हैं ना। तो ये सृष्टि के भृगु ऋषि है। सृष्टि के भृगु ऋषि वो था जिसने ज्योतिष शास्त्र खोज के निकाला। क्या करते हैं? मुहूर्त निकालने वाले। हम निकालेंगे श्रेष्ठ सृष्टि के, श्रेष्ठ कार्य का मुहूर्त। और मुहूर्त कब है? अब, अभी। पहले अपने लिए और फिर दूसरों के कल्याण के लिए बैठ जाओ। तो ये था नौवा। उसके बाद में दसवा, टेंथ इज यज्ञ, रचना करने वाले हो। राजस्व, राजस्व, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ, इतने सारे शब्द तो नहीं कहे बाबा ने, राजस्व अश्वमेध तो कहा है। तो हम सब कौन है? यज्ञ की रचना करने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं। इधर से कोई भी आ जाएगा। और यज्ञ करने को क्या महत्व है संसार में यज्ञ का? क्या समझा जाता है यज्ञ कोई करता है तो? बहुत शुभ नहीं, बहुत महान कार्य, बहुत पुण्य का कार्य। एक यज्ञ करता है तो कितना पुण्य मिल जाता है उसको, कितने लोगों को भोजन कराता है। तो हम इतना ऊंचा यज्ञ कर रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ को रचने वाले हम हैं। क्या नाम? आंचल मैन अर्थात अविनाशी, रुद्र, गीता ज्ञान, राजस्व, अश्वमेध यज्ञ रचने वाले। याद रखना, हम पूछेंगे, खाली इनको याद नहीं रखना है, आपको भी याद रखना है। उनके चेहरे के साथ वो जोड़ दो, कल कहा था लॉ ऑफ एसोसिएशन, व्यक्ति और पॉइंट जोड़ देना, फिर वो अलग ही ना हो पाए। जैसे एक व्यक्ति एक योगी के पीछे पड़ गया, मुझे मंत्र चाहिए, मंत्र चाहिए, मंत्र चाहिए। वो कहता है मुझे मंत्र नहीं आता, चल भाग यहां से। वो कहता है नहीं, आप ही दोगे, क्योंकि जो साधु पत्थर मारते उनके पीछे तो लोग और ज्यादा भागते, क्योंकि वो जरूर कुछ होगा उनके पास। ऐसे होते हैं ना साधु पत्थर मारने वाले, तो वो इतना परेशान होता है, वो कहते हैं आ जाओ देता हूं, बैठ लिख, और वो उसको मंत्र लिखाते हैं। और वो बहुत खुश हो जाता है कि अब मैं इसकी साधना करूंगा और सिद्धि को पाऊंगा, और वो जाने लगता है। जैसे दरवाजे पर पहुंचता है, गुरु कहता है पर एक बात याद रखना, जब मंत्र पढ़ोगे तो बंदर को याद मत करना। कहते बंदर को याद? आज तक बंदर को कभी याद नहीं किया, मैं क्यों करूं बंदर को याद? बंदर का मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैं बंदर को याद ही क्यों करूं? और वहां से निकलता है, रास्ते में चलने लगता है, अंधेरा है वहां, थोड़ा बंदर जैसा कुछ कुछ दिखता है। कहते बंदर, बंदर से मेरा लेना देना क्या, मैं क्यों बंदर को याद करूं? बंदर तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, बंदर को मेरा कोई संबंध ही नहीं है बंदर से। और आगे जाता है, घर पर पहुंचता है तो दिखता है एक बंदर घर के पास खड़ा हुआ है। कहते ये बंदर कहां से घर के पास आया, चलो छोड़ो, बंदर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। और फिर नहाने जाता है तो बाथरूम में बंदर, और फिर निकल के आता है तो घर में वहां बंदर बैठा है। अब तो मंत्र जाप करने जाता है तो बंदर बंदर बंदर, क्योंकि बंदर को याद करना नहीं है, पर बंदर और मंत्र एक हो गए। अब छोड़ देता है, दूसरे दिन साधु के पास जाता है, कहता है ये लो तुम्हारा मंत्र, इस जन्म में बंदर और मंत्र एक हो गए, अलग करना संभव ही नहीं है, अगले जन्म में आऊंगा आप सीधा। व्यक्ति और मंत्र दो चीजों को एसोसिएट कर देना, वो भूलती नहीं है, ये लॉ ऑफ एसोसिएशन है। एक पॉइंट को किसी व्यक्ति से जोड़ देना, भूलेगा नहीं। तो ये कहते हम 10 अश्वमेध यज्ञ, उसके बाद में 11वीं पॉइंट। 11वीं पॉइंट है कि दूसरों की जन्मपत्री बनाने वाले तुम हो। इधर से कोई भी आ जाएगा पीछे से, कौन हो तुम? दूसरों की जन्मपत्री बनाने वाले हो। खुद की तो जन्मपत्री हमारी बन चुकी है, अभी हम क्या काम कर रहे हैं? दूसरी आत्माओं की जन्मपत्री बनाने वाले हैं। जैसे हम उसकी बनाएंगे वैसे उसकी जन्मपत्री लिखने वाले हम ही, भाग्य विधाता मतलब हम ही। क्या नाम? जयेश भाई। जयेश भाई अर्थात जन्मपत्री बनाने वाले। तो उसके बाद में दिलीप भाई, वहीं खड़े रह जाइए, दिलीप भाई, दीपक भाई, सॉरी दीपक भाई। 12वीं पॉइंट, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा से भाग्य विधाता द्वारा दूसरों का भाग्य श्रेष्ठ बनाने वाले। दीपक भाई अर्थात क्या? श्रेष्ठ भाग्य की कलम, भाग्य की रेखा से भाग्य विधाता द्वारा दूसरी आत्माओं का भाग्य श्रेष्ठ बनाने वाले। कितना ऊंचा टाइटल है, कितना स्वयं पर अटेंशन रखना पड़ेगा कि हम वो है जो दूसरों का भाग्य बनाएंगे, अर्थात हमारा पहले अपना बना होना चाहिए, बना हुआ चाहिए, तो ही हम दूसरों का बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना सकते। तो दूसरों का भाग्य क्या करने वाले हैं हम? श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। ये है 12वीं पॉइंट। उसके बाद में 13वीं पॉइंट, इधर से कोई? दूसरी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा कराने वाली आत्माओं। क्या नाम? राजेश्वरी अर्थात दूसरी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा कराने वाली आत्मा। बैठ जाइए। मुक्ति में ले जाने वाली और जीवन मुक्ति में ले जाने वाली। ये बहुत ऊंचा कार्य है, ऐसे शब्द भी संसार वालों ने सुने नहीं होंगे। संसार वाले अपने दुख दर्द में डूबे रहते, उनको ये सब बातें पसंद नहीं आती है। और हम वो है जो आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाए कि यात्रा कराने वाली आत्मा हो। तो ये है 13वां। उसके बाद में 14वां, इधर से ही कोई आ जाओ। आत्माओं की सामूहिक सहगाई कराने वाली आत्मा, क्या कराने वाली, वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा मैरिज कहते हैं, मास मैरिज। आत्माओं की सामूहिक सगाई किससे कराने वाली, बाप से करवाने, परमात्मा से कराने वाली। क्या नाम? राजबाला। आत्माओं की परमात्माओं से सामूहिक सगाई कराना कितना अच्छा काम है, पुण्य का कार्य। उधर भी संसार, कुछ दिन पहले मुरली में आया था, वो पोप आता है, महात्मा आते हैं और शादी कराते हैं। यहां हम लोग शादी करा रहे हैं किसकी, आत्माओं की परमात्मा के साथ। वो एक बड़ा सुंदर गीत है सतीश भाई का गाया हुआ, सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है। कोई संगीत नहीं है उसमें, म्यूजिक नहीं है, बहुत कम म्यूजिक है, बहुत पुराना गीत है। सबसे बड़ी है सेवा सबका प्रभु से मिलन कराना है, ये सबसे बड़ा काम है। ब्राह्मण जीवन की अगर टॉप मोस्ट 10 कर्तव्य निकाले जाए, टॉप मोस्ट, ऐसे निकालते हैं ना आजकल की दुनिया में टॉप मोस्ट 10 बातें, उसमें ये पॉइंट आएगी कि आत्माओं का परमात्मा से सामूहिक मिलन कराना, भगवान से मिला देना किसी आत्मा को, बहुत ऊंचा काम है। तो ये हो गया 14। उसके बाद में 15वीं पॉइंट, पवित्रता का हतियाला। कौन है हम आत्माएं, बांधने वाली है आत्माओं को पावन बनाना, ये भी टॉप मोस्ट कर्तव्यों में से एक है। किसी का जीवन विकार में डूबा हुआ है, उसके हृदय में ब्रह्मचर्य जाग जाए, प्यूरिटी में आ जाए, ये बहुत बहुत टॉप लेवल का कर्तव्य है। तो इधर से कोई भी आ जाएगा, बहन जी, हाँ, कौन सा हतियाला बांधने वाले हैं, पवित्रता का हतियाला। क्या नाम? वैशाली बहन, अर्थात पवित्रता का हतियाला, आत्माओं का को बांधने वाली आत्माओं, बैठ जाइए। ये हो गया 15वां। उसके बाद में 16, अमर कथा सुनाकर क्या बनाने वाली, अमर बनाने वाली आत्मा। कोई भी आ जाए, प्रभाकर भाई, वहीं पे खड़े हो जाओ, ठीक है। अमर कथा सुनाकर क्या बनाने वाली आत्मा हूं, आत्माओं को अमर बनाने वाली आत्मा। अमर कथा अर्थात परमात्मा की कहानी, जन जन को सुनाओ। कल की मुरली में था, गले में क्या पहन लो, ढोल, अगर देहवान नहीं तो गले में ढोल पहनो और और ढोल बजाओ, ढोलक बजाओ, सुनो सुनो सुनो, भगवान आया हुआ है। वो हरे कृष्ण वाले कहते ढोल बजा के रास्ते में नाचते हैं, वैसे ढोल बजाते जाओ। तो देहभान नहीं है तो, इसलिए बाबा ने वहां प्रयोग किया शब्द, देहभान नहीं है तो ये करो। तो ये हो गया 16वां। उसके बाद में 17वीं पॉइंट, मैं महान आत्मा हूं। किसी ने कहा था वो पॉइंट यहां पर, किसने कहा था? अच्छा, आपका हो गया, कोई दूसरा ले लो, कोई भी, हाँ, क्या नाम? एक ही छोटी सी पॉइंट है, मैं क्या हूं, महान आत्मा हूं। जिसको जो जो, विजया बहन, अर्थात मैं महान आत्मा हूं, और जिसको जो जो सम्मान दिए जा रहे हैं वो अपने सम्मान पर उस पर लिखना है बाद में, यहां से जाने के बाद कल। महान आत्मा हूं अर्थात महान आत्मा के क्या लक्षण है, महान आत्मा बोलती कैसी है, चलती कैसी है, उठती कहती है, क्या क्या करती है, तब महान कहा जाएगा। बैठ जाओ। तो मैं महान आत्मा हूं। उसके बाद में इधर से कोई आ जाओ, मैं पूर्वज आत्मा हूं। मैं कौन हूं? पूर्वज। बहन जी पीछे है, क्या नाम? अंजलि बहन, अर्थात पूर्वज, एंसेस्टर। पूर्वज जो होते हैं ना वो डिस्टर्ब नहीं होते, जैसे दादाजी होते हैं ना, वो पोता उसकी दाढ़ी खींचता है, इधर करता है इधर, तो गुस्सा होता है क्या? नहीं होता है। आज भी कहा, क्रोध नहीं करो, ओखली से बांधो, वो भी छोटा भाई है, आज की मुरली में है ना सुबह। तो पूर्वज अर्थात अनडिस्टर्ब्ड, ये सारी मेरी वंशावली है छोटी, मैं इनसे डिस्टर्ब नहीं हो सकता, उनकी तो पालना करनी है मुझे, तो मैं पूर्वज आत्मा हूं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, मैं जिम्मेवार आत्मा हूं। कौन रह गया, क्या नाम?
नरेश
भाई जी। मैं जिम्मेवार आत्मा हूं। अभी यहां पर बहुत सारा वर्णन किया है बाबा ने, यहां बहुत सारा वर्णन है, इतना बड़ा पैराग्राफ है। वर्णन में कहा है कि कोई ये समझता है सेंटर और परिवार, इसका मैं कल्याणकारी हूं, तो अर्थात क्षत्रिय, तुम्हें बेहद की जिम्मेवारी है, बेहद की जिम्मेवारी है, सारे विश्व की जिम्मेवारी है। और फिर वहां वो तीरंदाजी और वो सारी भी बातें कही है, वो नहीं तो उसमें चला जाएगा, जो निशाना नहीं लगाता वो समस्या स्वरूप, वो क्षत्रिय में चला जाएगा, वो इसमें नहीं रहेगा। फिर कौन सा पुर मिलेगा? दूसरे पुर की टेस्ट मिलेगी, जो देवताओं का खा पी के जो बचा हुआ होगा ना, वो त्रेता में मिलेगा, फिर त्रेतावासी बनोगे। ये वाली बात कही है वहां पर। तो तीर निशाने पर हो, अर्थात जिम्मेवार आत्मा। कितने हो गए? 19। उसके बाद में 20। 20वां कौन खड़ा हो जाएगा? ये वंडर ऑफ 20वां, भगवान के दिल में आराम से रहने वाली आत्मा हो, अर्थात रूहानी मौज में रहने वाली आत्मा हो। क्या नाम? ज्योति बहन। अर्थात रूहानी शान में रहने वाली आत्मा हो, अर्थात विनाशी मौज नहीं मनाने वाली आत्मा हो। विनाशी मौज से संबंध नहीं है। बाबा ने यहां दो तीन उदाहरण दिए हैं। चींटी अगर किसी को काटती है तो विचलित होते हैं, या चींटी कान में चली जाती है हाथी के, तो क्या हो जाता है? वो मूर्छित हो जाता है। तो कोई भी चींटी को अंदर नहीं जाने देना, छोटी बातें, परेशान नहीं होना है। उधर कहते थे हे भगवान, यहां कहते ओ दादी, हे दादी, हे दादा, दादी दीदी, हे बाबा, ये सब नहीं कहना है। यहां पर परेशान नहीं होना है यहां पर। और यहां पर वो भी एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण, क्षत्रिय क्या करत भय। पहले चींटी बिल्ली वो सारा आया, ये गया वो आया, वो आया वो आया, पहले धन नहीं मन नहीं परेशान, ये वो, ये सब नहीं। तो रूहानी मौज में रहने वाली आत्मा। और लास्ट पॉइंट 21वां, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, यूपी ग्रुप से मुलाकात। इसमें बाबा ने कहा ऐसा कुछ करके दिखाओ जो आज तक किसी ने नहीं कहा, किया तब कहेंगे ये वंडरफुल बात है। तो ये कौन करेगा? कौन सा, किसको देंगे ये पॉइंट? आप ऐसा कुछ करके बताओ। क्या नाम? आप ही, अभी वही बैठ जाओ, वही खड़े हो जाओ। हाँ, रागिनी बहन, अर्थात वंडरफुल, अर्थात ऐसा कुछ, गीता पाठशाला खोलना, सेंटर खोलना, ये वंडरफुल नहीं है। वंडरफुल अर्थात ऐसा कुछ जो आज तक किसी ने नहीं किया। बैठ जाओ, अभी पूरी मुरली रिवाइज करेंगे। वन नंबर अपनी जगह पर क्या है? ये ब्राह्मणों के 21 लक्षणों की हम चर्चा कर रहे हैं। संडे को चली हुई अव्यक्त वाणी पार्ट 2, ब्राह्मण पहली रचना है। क्या नाम है पहली रचना का? नीरज भाई, अर्थात पहली रचना। नीरज, नीरज अर्थात पंकज, पंकज अर्थात सरोज, सरोज अर्थात लोटस, कमल। बैठ जाओ। दूसरा, ये तो चेहरे पर ही लिखा है तपस्या। तेज इतना ज्यादा है कि ब्रह्मा मुख वंशावली मानस पुत्र है ब्रह्मा के। तो दूसरा अर्थात मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा कुमार कहो या मैं ब्रह्मा मुख वंशावली हूं। तीसरा, तीसरा कौन था? काजल बहन। अरे नहीं, आप नहीं बताना, ये बताएंगे। आप खड़े हो जाओ खाली, ये बताएंगे आप कौन है। कौन है ये? ये देवता से, लक्ष्मी से, लक्ष्मी इनके सामने कुछ भी नहीं है, लक्ष्मी पानी में भरती है तो लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ है, तो देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण। चौथा कौन है? विष्णु भाई क्या है? आदिवासी आदि संगमवासी, आदि संगमवासी, आदिवासियों का भी कल्याण करने वाला है, अर्थात त्रिकालदर्शी, अर्थात ज्ञान स्वरूप, अर्थात त्रिनेत्री। चौथा, पांचवा कौन है? पांचवा, पांचवा कौन था? अरे अपना ही भूल गए क्या? हाँ, पांचवा साकार सृष्टि में, साकार यहां पर, साकार दुनिया में क्या कर दिया? साकार मिलन मनाया भगवान के साथ में, पार्ट है इनका, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना घूमना। हमने देखा हमने देखा हमने पाया, कैसे नशे वाला गीत है, यज्ञ का सबसे पहला गीत है ये, द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ दिस यज्ञ। हमने देखा हमने पाया, शिव भोला भगवान। पांचवा, छठवा कौन है? हाँ ये इधर है, आप लेट आए थे, क्या था पर आपका? अभी तो हो गए ना, क्या है इनका? आप बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। हाँ लेट आकर भी क्या कर दिया, जिसे कोई नहीं पा सका, साधु संत योगी तपस्वी उदासी महात्मा शंकराचार्य आचार्य महामंडलेश्वर इमाम तीर्थंकर बुद्ध पैगंबर पयंबर मैसेंजर, कोई नहीं, चाइल्ड ऑफ गॉड कोई भी नहीं पा सका, वो तुम आपने पा लिया। और नशे से कहते हो, खुशी से कहते हो, निश्चय से कहते हो, दिल से कहते हो, क्या कहते हो? कि बाप को मैंने पा लिया, बाप के हर रूप को, हमारा बाप को हर रूप में जाना, माँ बाप बंधु सखा सब कुछ। तो ये था छठवा। सातवा कौन है? सातवा सातवा ये है रीमा बहन, क्या है सातवा? अविनाशी अखंड अचल अडोल, और जोड़ दो, प्राप्ति स्वरूप आत्मा है, कुछ पाना बाकी नहीं रहा है, सब मिल चुका है, प्राप्ति स्वरूप भरपूर आकंठ यहां तक। सात छठवा सातवा आठवा फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है, ये नहीं रहे तो ये क्लास भी नहीं है। ये फाउंडेशन है तो इनसे ही सारा पानी भी नहीं जा रहा है सबको, सारी आत्माओं को, सारे विश्व को। तो ये जड़ है, फाउंडेशन है, तो मैं जड़ हूं। जड़ों को जाकर देखना जड़े कैसी होती है, कुछ कुछ झाड़ों से जड़े दिखाई देती है, जड़ों के पास जाके बैठ के चिंतन करना वहां पर। कोई अगर पूछे क्या करे, कुछ नहीं मेरा कुछ खो गया था, ऐसे बोल देना फिर। नहीं तो कहेंगे इसका कुछ गड़बड़ दिख रहा है। नेक्स्ट कितना हो गया? नौ। नौ किसका है? अमन। हाँ क्या है इनका? सृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर किसको भी निकालना है तो अमनदीप भाई के पास चले जाना। कोई भी चीज का मुहूर्त, सेंटर खोलना है, ये खोलना है, वो खोलना है, नई दुनिया का मुहूर्त निकालने वाले, इधर का भी निकाल देंगे अच्छे अच्छे कार्यों का, लगे हाथ तो वो भी हो जाएगा काम। तो मुहूर्त निकालने वाली आत्मा हो, श्रेष्ठ कार्य का, निर्माण के कार्य का मुहूर्त निकालने वाली आत्मा हो। उसके बाद में दसवा कौन है? ये अश्वमेध अविनाशी, ऐसा हो जाना चाहिए बोलते बोलते, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचने वाली मैं आत्मा हूं। इतना बड़ा यज्ञ रचना, कितना बड़ा पुण्य मिल जाएगा। हाँ वही, और तब हम रच रहे, बहुत ही बड़ा पुण्य प्राप्त कर लिया, बैठ जाओ। और उसके बाद में कितना हो गया है इनका? क्या है? दोनों दूसरों के जन्म पत्री बनाने वाले है, दूसरों की जन्म पत्री जानने वाली आत्मा है, अर्थात किसी भी आत्मा से डिस्टर्ब नहीं हो सकते। जो भी आत्मा संपर्क में आएगी पूरी 84 जन्मों की जन्म पत्री पता है उसकी। ये जो आत्मा मेरे सामने आ रही है इसका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कच्चा चिट्ठा सब पता है, एक एक बात उसकी पता है मुझे, इसलिए कोई भी आत्मा डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि हर आत्मा को मैं जान चुकी हूं। परवश है कुछ आत्मा है, क्या करे, हमने ही दुख दिया है उनको, हिसाब है, क्या करे, इसके लिए डिस्टर्ब नहीं। उसके बाद में बारहवा दीपक भाई जी का क्या है? कलम। कलम हाथ में ही रखी हुई है, विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ तकदीर, कलम भाग्य श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा, कलम से बैठ जाइए, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तेरहवा मुक्ति, जीवन मुक्ति का हर आत्मा को रास्ता बताने वाली आत्मा हूं। उसके बाद कौन है, क्या करते हो, ये क्या करते है? बताएंगे सब लोग। आत्माओं की सामूहिक सगाई, बड़ा काम है ये, अच्छा। रूहानी पंडित, रूहानी ज्योतिषी, रूहानी पंडित, तो सबकी सामूहिक सगाई कर देना, ठीक है, तो फायदा हो जाएगा सबका। उसके बाद वैशाली ना, वैशाली बहन का क्या है? हतियाला, जो दिखा उसको हतियाला। एक ब्रह्मा कुमारी बहन जा रही थी स्कूटी पर और ट्रैफिक लाइट उसने क्रॉस कर दिया, तो वो पुलिस उसके पीछे, ए रुको रुको रुको, आओ क्या है, चलो चलो स्टेशन। तो वो कहती, अरे भैया आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आई थी ना आपको राखी बांधने। वो कहते, हाँ हाँ मैं आई थी। वो कहते, हाँ शायद आई थी। पुलिस वाला भी कंफ्यूज हो गया, ये बहने तो आती है। तो हतियाला मानना है, कौन सा हतियाला? अर्थात पक्की प्रतिज्ञा करनी है स्वयं से, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ छोड़ देंगे पर ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे परंतु प्यूरिटी को नहीं छोड़ेंगे। वो आधार है इस ब्राह्मण जीवन का, भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। आज सुबह की साकार मुरली, वो जो सत्संग है वहां प्यूरिटी की बात ही नहीं है, अपवित्रता की तो बात ही वहां होती नहीं है, पवित्रता की बात यहां होती है। इसलिए असुरों के अग्निघ्न पड़ेंगे इस यज्ञ में। सुबह था ना, तो कितना नंबर हो गया ये? 16। 17 कौन है? 16 अभी शुरू होगा। 16 कौन है? प्रभाकर भाई, अमर कथा सुनाकर सबको अमर भाव का वरदान देने वाले। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं? महान आत्मा हो, तो महान आत्मा के क्या क्या लक्षण है इनको लिखना है आपको, ठीक है? आपका होमवर्क, महान आत्मा क्या करती है, महान आत्मा क्या सोचती है, क्या बोलती है, कैसे कर्म करती है, कैसा व्यवहार करती है, कैसा आचरण होता है, खाती कैसी है, उठती करती है, बैठती कैसी है, कैसा सब कुछ करती है, वैसा सब कुछ वो लिखना है, ये होमवर्क। नेक्स्ट 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 कौन है? हाँ इधर है, कौन हो? पूर्वज। पूर्वज अर्थात पूर्वज अर्थात बड़े, एंसेस्टर, फोर फादर, ये सब मेरे छोटे छोटे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुधर जाएंगे, अभी अभी तो गलती करते रहेंगे, हम तो बड़े हैं ना, पूर्वज है। उसके बाद जिम्मेवार कौन है? हरीश भाई। मैं कौन हूं? जिम्मेवार आत्मा हूं, एक घर का नहीं हूं, एक परिवार का नहीं हूं, सकल विश्व का हूं, सारे विश्व के लिए हूं। अगर सारे विश्व की भावना होगी तो ही देवता, नहीं तो क्षत्रिय। फिर उसमें वो उदाहरण चीटी विटी कान में घुसे, परेशान नहीं होना, वो सारी बातें उसमें आई है। उसके बाद में क्या है इनका? रूहानी शान में रहने वाली, रूहानी नशे में, रूहानी मौज में, भगवान के दिल में आराम से रहने वाली। इसमें बाबा ने कहा हम भोजन खाओ, मुरली सुनो, शक्तिशाली सेवा करो, और परेशान क्यों होते हो? यहां वो बात है चिट्टी वाली, चिट्टी थोड़ी सी घुस गई कान में तो परेशान नहीं होता है, पर तू हाथी को बेहोश कर देती है चिट्टी, तो अनडिस्टर्ब्ड। और रूहानी मौज में रहने वाली, और क्या चाहिए, भगवान मिल गया। नशे में रहो, खुशी में रहो, मौज में रहो, शान में रहो, परेशान नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना किसी भी बात से। उसके बाद में कौन है? हाँ लास्ट पॉइंट, ऐसा कोई कार्य करने वाली जो आज तक किसी ने नहीं किया, पॉजिटिव वाला। अर्थात ताजमहल, अर्थात वंडरफुल। तो ये कितनी बातें हो गई? 21 बातें। तो ये भी एक विधि है मुरली रिवीजन की। तो ऐसी अपने सेंटर पर भी मुरली रिवाइज कराना। खाली इसमें एक ही छोटी सी शर्त है, कराने वाले को सब पता चाहिए, कराने वाला भूलना नहीं। हम कह रहे हैं अपने सेंटर पर जा जाकर इसी तरह से ग्रुप बनाकर मुरली को रमणीक बनाना है, खेल खेल में करनी है, ताकि वो एंटरटेनिंग हो जाए। नहीं तो वही वही बातें सुन सुन कर दिमाग ही सुन हो गया है, कब पॉइंट्स यहां से आती है और कब चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है, सारी मुरली एक जैसी दिखाई देती है। कुछ भी अलग अलग कुछ नहीं दिखाई देता है, सब एक ही है, वही वही है, वही चीज है उसमें। दो मिनट में आज सुबह की साकार मुरली की पॉइंट सुना दो। फिर क्लास पूरा करते हैं। क्या क्या बोला आज सुबह? हाँ ये पर्सनल प्रैक्टिस है। कौन सी प्रैक्टिस करो? आत्मा देखने की प्रैक्टिस करो, आत्म भाई की प्रैक्टिस करो, और क्या क्या अंतर्मुखी होकर याद का अभ्यास करो, और विचार सागर मंथन करो, नॉलेज डीप है, नॉलेज डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट है, और निश्चय पक्का करो। उसमें से बाबा ने बताया वो सुनंती कथंती भागंती पार्कती देवंती और माया बहुत प्रबल है। हाँ मुख से उल्टा सुल्टा बोल, कुछ नहीं बोलना है, और भाई भाई की दृष्टि, और और वहां आत्मा अभिमान, वहां परमात्मा अभिमानी नहीं बनते, परमात्मा अभिमानी यहां बनते हो तुम, और सत्संग, वो तो वरदान वो था सत्संग, और ना मारना नहीं अपने बेटे को भी आत्मा समझना है, ओखली से बांध के भक्ति मार्ग का उदाहरण, और क्या क्या जहां पानी है वहां मेले लगते हैं, और हाँ ये मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है, और बुराई को भी क्या कर देना है, अच्छाई में परिवर्तन कर देना है, और डीप सब्जेक्ट है वो बोल दिया डिफिकल्ट है, और हाँ ये आधे कल्प से हिरे हुए हैं प्यार से, इसके लिए देह से प्यार छूटता नहीं है, ये बड़ा प्यार है इस चमड़ी से चिपके रहते हैं इससे, बहुत अच्छा लगता है ये। बाबा कहते हैं अविनाशी से प्यार करो तो अविनाशी बन जाओगे, और ट्रीटमेंट होके रहना है, और अपनी चेकिंग पोतामिल के बारे में कहा बाबा ने, और सारे हिलेंगे, और सब हिलेगा भक्ति मार्ग का, और हमेशा बाप की याद में रहेंगे। तो मुरली सुनते सुनते बहुत सारी बातें आती है, अलग 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 रीति से उसको समझना जानना गहराई में जाना डिस्कस करना चिंतन करना हमारे मुख से निकलने चाहिए, ज्ञान के संस्कार क्रिएट करने, नए संस्कार वो होंगे निकल बोल से हमारे निकलने चाहिए ज्ञान, तो ज्ञान के नए संस्कार यहां पर निर्माण कहा कि आत्मा में दिव्य गुण दिव्य संस्कार धारण करो, बोला ना। अच्छा ओम शांति।